एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतरने वाले हैं जिसने सोशल मीडिया पर, खासकर बुक टॉक पर, एक तूफान ला दिया था।
हाँ बिल्कुल,
ये एक ऐसी कहानी है जो जितनी रोमांटिक लगती है उतनी ही, कह सकते हैं, दिल दहलाने वाली भी है।
सही कहा।
हम बात कर रहे हैं कॉलीन हूवर के उपन्यास इट एंड्स विथ अस की।
और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये किताब उन मुश्किल सवालों से टकराती है जिनसे समाज, मतलब अक्सर, नजरें चुराता है।
हाँ,
और हूवर ने ये उपन्यास अपनी माँ के अनुभवों से प्रेरित होकर लिखा है, तो इसमें एक निजी और सच्ची कड़वाहट भी है जो पाठक को झकझोर कर रख देती है।
तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी बोस्टन में सेट है।
हाँ, बोस्टन में।
और हमारी मुख्य पात्र हैं लिली ब्लूम, जो अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रही है।
उसका बचपन आसान नहीं था। उसने अपने पिता को अपनी माँ पर हाथ उठाते देखा है।
और कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है
कि तब क्या होता है जब वो इंसान जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वही आपको सबसे ज्यादा दर्द देने लगता है।
हाँ बिल्कुल, और इसी सवाल के केंद्र में है तीन किरदार
जो इस कहानी को चलाते हैं। सबसे पहले लिली ब्लूम।
लिली,
वो एक हिम्मत वाली, मजबूत लड़की है जो अपना फूलों का बिजनेस शुरू करना चाहती है, और वो खुद से वादा करती है कि वो कभी भी अपनी माँ वाली जिंदगी नहीं जिएगी।
जहां प्यार के नाम पर हिंसा को सहा जाता था।
बिल्कुल, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था।
और फिर आता है रायल किनकेड।
रायल
एक बेहद कामयाब और करिश्माई न्यूरोसर्जन। पहली नजर में वो हर लड़की का सपना लगता है।
हैंडसम, बुद्धिमान, सफल, सब कुछ।
लेकिन उसकी इस चमकती हुई सतह के नीचे एक गहरा अंधेरा छिपा है, एक गुस्सा जिसे वो काबू नहीं कर पाता।
और रायल का किरदार सिर्फ एक विलन नहीं है, है ना? वो एक सफल डॉक्टर है, आकर्षक है और लिली से सच में प्यार भी करता है।
हाँ, यही तो बात है। क्या यही वजह है कि कहानी इतनी असरदार है कि असल जिंदगी में राक्षस सींग लगाकर नहीं आते?
आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। होवर इसी दुविधा को दिखाती हैं। अगर रायल शुरू से ही बुरा होता तो लिली का उसके साथ रहना बेवकूफी लगती।
सही बात है।
लेकिन क्योंकि उसमें इतनी अच्छाइयां भी हैं, लिली और पाठक भी उस उम्मीद में फंस जाते हैं कि वो बदल जाएगा।
यही तो घरेलू हिंसा का सबसे खतरनाक जाल है।
अच्छे पलों की उम्मीद। और इस कहानी में उम्मीद की एक और किरण है, एटलस कॉरिगन।
लिली का पहना प्यार।
हाँ, एटलस लिली का पहला प्यार है और इस कहानी का, मतलब, एक नैतिक कंपास भी। वो सुरक्षा, दया और एक सेहतमंद रिश्ते का प्रतीक है।
उसका किरदार ज्यादातर लिली की पुरानी डायरियों के जरिए हमारे सामने आता है।
हाँ, लेकिन जब वो वर्तमान कहानी में वापस आता है तो सब कुछ बदल जाता है।
तो कहानी की शुरुआत होती है लिली के पिता के अंतिम संस्कार की रात से। लिली शहर की एक छत पर अकेली बैठी है और वहीं उसकी मुलाकात रॉयल से होती है।
और उनकी पहली मुलाकात ही बहुत अजीब और गहरी है। वो नेकेड ट्रूथ्स, यानी कड़वी सच्चाइयां नाम का एक खेल खेलते हैं।
मतलब बिना किसी लाग लपेट के एक दूसरे को अपनी जिंदगी के सबसे कड़वे राज बताना।
हाँ, और यहीं से उनके बीच एक झटके में गहरा कनेक्शन बन जाता है,
जो शायद एक चेतावनी भी थी।
शायद। जल्द ही उनका रिश्ता आगे बढ़ता है। लिली अपना सपना पूरा करती है, फूलों की दुकान खोलती है, और इत्तेफाक से वो रॉयल की बहन एलिसा को नौकरी पे रख लेती है, जिससे रॉयल और लिली और भी करीब आ जाते हैं।
इसी दौरान लिली को अपनी पुरानी डायरियां मिलती हैं।
हाँ, जिनमें उसने एटलस के साथ अपने रिश्ते के बारे में लिखा था।
ये सिर्फ एक फ्लैशबैक नहीं है, है ना?
नहीं, ये बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया गया है। डायरी हमें वो भोली भाली टीनेजर लिली दिखाती है जिसे एटलस के रूप में एक सुरक्षित और सच्चा प्यार मिला था,
एक ऐसा लड़का जो बेघर था लेकिन उसने लिली को हमेशा महफूज महसूस कराया।
और फिर हम आज की लिली को देखते हैं जो रायल के जुनूनी और अस्थिर प्यार में फंसी है। ये दोनों कहानियां साथ साथ चलकर हमें दिखाती हैं कि प्यार कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं।
और फिर वो पल आता है जब प्यार की खूबसूरत तस्वीर टूटने लगती है।
बिल्कुल। एक शाम लिली और रायल घर पर हैं। गलती से लिली एक भरम बर्तन छू लेती है और वो जल जाता है,
और रायल मदद करने के बजाय उस पर चिल्लाता है
और गुस्से में उसे इतनी जोर से धक्का देता है कि वो गिर जाती है। ये हिंसा की पहली घटना थी।
और वो तुरंत माफी भी मांगता है।
हाँ, तुरंत घुटनों पर आकर माफी मांगता है, रोता है और कहता है कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। और लिली जो उससे प्यार करती है उसे माफ कर देती है। वो खुद को यकीन दिलाती है कि ये बस एक हादसा था।
लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी।
रायल का शक और ईर्ष्या जाग उठती है। उस रात घर आकर जब रायल लिली की डायरी पढ़ता है जिसमें एटलस का जिक्र है, तो वो अपना आपा खो बैठता है
और रैली को सीढ़ियों से धक्का दे देता है।
हाँ,
एक सवाल जो ऐसे मामलों में हमेशा उठता है वो है, वो उसे छोड़ क्यों नहीं देती?
मुझे लगता है इस उपन्यास की सबसे बड़ी कामयाबी इसी सवाल का जवाब देना है।
सही बात है।
कहानी दिखाती है कि ये एक घटना नहीं, एक चक्र है। हिंसा होती है, फिर रायल टूटकर माफी मांगता है, महंगे तोहफे लाता है, वादे करता है,
फिर कुछ दिन या हफ्ते सब बहुत अच्छा रहता है,
और लिली को लगता है कि उसका प्यार उसे बदल देगा। वो अच्छे रायल को बुरे रायल से बचाने की कोशिश करती है। ये कोई स्विच नहीं है जिसे बंद कर दिया, ये एक दलदल है जिसमें इंसान धीरे धीरे धंसता जाता है।
हर माफी के साथ उम्मीद की एक झूठी परत चढ़ती जाती है।
बिल्कुल।
और कहानी का सबसे मुश्किल और दिल तोड़ने वाला हिस्सा तब आता है जब लिली को पता चलता है कि वो गर्भवती है।
हाँ, ये कहानी का चरम बिंदु है। लिली को लगता है कि शायद बच्चा आने की खबर से रायल सुधर जाएगा, लेकिन एक रात रायल को पता चलता है कि लिली ने एटलस को उसकी हिंसा के बारे में बताया है।
उसे लगता है कि लिली ने उसे धोखा दिया है,
और उस रात वो गुस्से में लिली पर बेरहमी से हमला करता है, उसे मारने की कोशिश करता है।
लेकिन क्या ये सिर्फ वो हमला था जिसने उसका भ्रम तोड़ा, या अपनी होने वाली बेटी के बारे में सोचकर उसे ये हिम्मत मिली?
ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, हमला आखिरी कड़ी था, लेकिन असली बदलाव उसकी बेटी के ख्याल से आया। उस रात जब वो खुद को आईने में देखती है, जख्मी और टूटी हुई, तो उसे अपनी माँ का चेहरा याद आता है।
उसे एहसास होता है कि वो इस दर्द की विरासत को अपनी बेटी तक नहीं पहुँचने देगी।
वहीं पर वो कहती है, इट एंड्स विद अस, ये सिलसिला मेरे साथ खत्म होगा।
ये कहानी का सबसे शक्तिशाली क्षण है, जहाँ एक पीढ़ी का दर्द दूसरी पीढ़ी को बचाने का फैसला बन जाता है।
बिल्कुल। लिली रायल को छोड़ देती है, कुछ महीनों बाद वो अपनी बेटी एमर्सन को जन्म देती है।
और एक बहुत ही मार्मिक सीन में जब रायल अपनी बेटी से मिलने आता है तो लिली उससे तलाक मांगती है।
हाँ, वो रायल से कहती है कि वो उससे आज भी प्यार करती है, लेकिन अपनी बेटी की खातिर वो उसके साथ नहीं रह सकती। वो उस चक्र को तोड़ देती है जिससे उसकी माँ नहीं तोड़ पाई थी।
और कहानी का अंत उम्मीद की एक किरण के साथ होता है।
हाँ, उपसंहार में कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है। लिली और रायल मिलकर अपनी बेटी की परवरिश कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग।
और लिली एक कामयाब बिजनेस वुमन और एक माँ है।
एक दिन सड़क पर उसकी मुलाकात फिर से एटलस से होती है, और एटलस उससे कहता है, अब तुम तैरना बंद कर सकती हो लिली, हम आखिरकार किनारे पर पहुंच गए हैं।
ये एक बहुत ही खूबसूरत अंत है
जो बताता है कि तूफान के बाद शांति मुमकिन है।
एक बात जो मुझे इस किताब को पढ़ते हुए महसूस हुई वो ये कि मैं लिली के फैसलों पर गुस्सा नहीं बल्कि हमदर्दी महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सब कुछ उसकी आंखों से देख रहा हूँ।
आपने बिल्कुल ठीक समझा। पूरी कहानी लिली के नजरिए से, यानी फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। ये एक जानबूझकर किया गया चुनाव है
ताकि पाठक लिली के मन में उतर जाए।
हाँ, ताकि वो ये समझ सके कि ऐसे रिश्ते को छोड़ना कितना मुश्किल होता है। हम रायल की अच्छाइयों को भी लिली की आंखों से देखते हैं, और उसकी हिंसा के दर्द को भी उसी की तरह महसूस करते हैं। इसलिए हम उसे जज नहीं करते, हम उसे समझते हैं।
और कहानी में प्रतीकों का भी बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है।
हाँ, जैसे लिली के फूलों की दुकान। फूल नाजुक भी होते हैं और मुश्किल हालात में खिल भी सकते हैं, बिल्कुल लिली की तरह।
उसकी दुकान उसकी आज़ादी का प्रतीक है।
और किनारा, जिसका जिक्र एटलस आखिर में करता है, वो सुरक्षा और शांति का प्रतीक है, जहाँ जिंदगी का संघर्ष खत्म होकर एक नई शुरुआत होती है।
तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें क्या सिखाती है? मेरा ख्याल से ये सिर्फ घरेलू हिंसा पर एक कहानी नहीं है।
नहीं, ये हिम्मत, आत्मसम्मान और पीढ़ियों से चले आ रहे सदमे को तोड़ने की कहानी है।
और ये भी कि सच्चा प्यार आपको बनाता है, तोड़ता नहीं।
बिल्कुल। सच्चा प्यार सम्मान और सुरक्षा पर टिका होता है, और कभी कभी जिंदगी का सबसे बहादुरी वाला काम किसी ऐसे रिश्ते को छोड़ देना होता है जो आपको खत्म कर रहा हो,
भले ही आप उस इंसान से कितना भी प्यार क्यों ना करते हो।
हाँ,
और शायद ये कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने आसपास के रिश्तों में चेतावनी के संकेतों को कैसे पहचाने, क्योंकि कहानी का सबसे डरावना सच यही है कि रायल जैसा कोई भी हो सकता है।
आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, या कोई ऐसा जिसे आप एक बहुत अच्छा इंसान मानते हैं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।